हम लोग जो हैं, जो कुछ कर रहे हैं इसी प्रकार से करते रहें और अपने हृदय के भाव को सुधार लें तो हमारी बार की क्रिया का सुधार अपने आप ही हो जाता है। ये ख्याल रखना चाहिए, जितनी जो उत्तम क्रियाएं हैं, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, शास्त्र विहित जितनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की अपेक्षा जो भाव है वो और ज्यादा दामी चीज है। क्रियाओं के सुधार से थी भाव का सुधार होता है, किंतु बहुत ही आस्ते आस्ते, और भाव के सुधार से थी क्रियाओं का सुधार तुरंत हो जाता है। इसलिए भाव का सुधार होना चाहिए। जैसे कोई एक विष की बेली है या विष का एक वृक्ष है, उस विष के वृक्ष का डाला पत्ता काटने से काम तो होता है, वो वृक्ष कमजोर हो जाता है, किंतु जड़ उखाड़ने से एकदम सब खत्म हो जाता है, डाले पत्ते सभी सूख जाते हैं। तो हृदय के जो भाव हैं वो जड़ है, उसके सुधार से सबका सुधार होता है, उसके नाश करने से सबका नाश हो जाता है। यानी समझो कि जैसे विष का वृक्ष मान लो और जैसे साधन का वृक्ष मान लो, तो साधन के वृक्ष में हृदय के भावों के सुधार से बार का सुधार हो जाता है, और जिस विष का वृक्ष माना जाए तो उसके जड़ काटने से सब कट जाते हैं। तो हम लोगों के हृदय के बीच के माँ जो बुरे भावों का संग्रह है, उनको हम लोग उसको पोषते हैं तभी वे टिके हुए हैं। घर का मालिक यदि उसको नहीं रहने देता तो वे नहीं रह सकते, किंतु हम उसको एक प्रकार से आश्वासन दे देंगे तो दूसरा निकालने वाला कौन? हमारे भीतर में जो काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि जो अनेक दुर्गुण हैं, इनको हम लोग ही उसको बचा रखा है। यदि वो मालिक उसे निकालना चाहे तो कोई विशेष समय नहीं लग सकता। इसके लिए तो आप ख्याल करिए कि आपके भी इसके में बहुत से दोष हैं, बहुत से दुर्गुण आपके हृदय में भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आदि अनेक एक प्रकार से आप में दोष भरे हुए हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं, उनको आप पोष रहे हैं तभी वे टिके हुए हैं। पोषना क्या? किसी आदमी ने कहा कि इस विषय में तो आपका ये व्यवहार ठीक नहीं हुआ, क्योंकि लोभ के कारण ये आपका व्यवहार एकदम बिगड़ गया। वो कहता है कि ये लोभ तो सब में है कि आप में नहीं है। तो हमारे भीतर में जो लोभ है उसको एक प्रकार से हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। कभी क्रोध आता है तो हम एक प्रकार से उसको पोषते हैं, पोषण करते हैं। दूसरा कोई भाई कहता है कि देखो एक प्रकार से आपने ये बात क्रोध से कही, बोले क्रोध से नहीं कही, नीति की बात कही, उचित बात है। वो भी मन में सोचता है कि हाँ ये बात उत्तेजना से कही गई, किंतु उसको स्वीकार नहीं करता। कोई भी आपके माँ दोष है और मैं उस दोष के विषय के बीच के माँ बहुत मैं वाई के साथ आपको समझाता हूँ कि भी ये आपके बीच के मैं विशेष दोष है, किंतु वो चीज भी आपको भारी मालूम देती है और उसके लिए आप सफाई देने के वास्ते तैयार होते हैं। यही अपने भीतर में जो दोष है उनका पोषण करना है। आप बताइए, जब आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं तो वो दोष आपसे कैसे हटेगा? तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है उनको अपने भीतर में जो इकट्ठे हुए दोष है इनको हर प्रकार से निकालने चाहिए। कोई भी आदमी अपनी बुराई कहता है तो ध्यान देकर सुनना चाहिए और उस दोष को एकदम हटाना चाहिए, तो दोष जल्दी हट सकते हैं। बड़े प्रेम के साथ अपने दोस्तों के विषय में पूछना चाहिए और दूसरे भाई जो बतला रहे उससे और भी अधिक समझना चाहिए कि ये बेचारे जानते नहीं है, ये तो हमारी एक ही क्रिया देख करके दोष का अनुमान किया, किंतु हम जानते हैं कि हमारे में कितने दोष। किसने कहा कि आपकी दृष्टि अब मुख एक स्त्री की तरफ लगी, इससे मालूम होता है कि एक प्रकार से थी, कभी कभी आप में दृष्टि दोष घट जाता होगा। पर नहीं नहीं, ये तो एक स्वाभाविक ही मेरी दृष्टि चली गई थी, कोई दोष की बात कुछ नहीं। फिर हम मन में सोचते हैं कि ये तो बेचारा एक ही दफे देखा, ऐसी दृष्टि तो हमारी बहुत दफे जाती है, यदि उसको हम शिक्षा मान ले में तो हमारा सुधार हो सकता है, और यदि उस दोष का हम पोषण करें तो वो हमारे हृदय के मां और दृढ़तापूर्वक प्रवेश करके कि अपना घर घाल देता है। हम लोगों में जितने जो दोष हैं वो हमारे टिकाए हुए हैं, तो इस प्रकार से थी दोषों को चुन चुन करके निकालना ये भी एक तरीका है, किंतु इससे भी बढ़कर के और एक तरीका है, वह यह है कि आपके हृदय के भावों का सुधार करिए। हृदय के भावों का सुधार होने से ये दोष आप ये सुविधा हो जाएंगे। आपका जो व्यवहार है उसमें दोष तो कुछ घटते हैं, किंतु उसकी चर्चा नहीं कर करके मैं केवल आपको ये कहता हूँ कि आप एक प्रकार से थी भगवान का जो भजन है यानी नाम का जप और भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है इसको आप दामी बनाइए। इसके दामी बनने से आपके हृदय के भाव का सुधार होने से वे दोष आप ले जाएंगे। जब आपके हृदय का भाव शुद्ध हो जाएगा तो आपकी बाहर की क्रिया भी पवित्र हो जाएगी। आपके हृदय में जब निष्काम भाव की जागृति हो जाएगी तो आपकी सारी क्रिया बड़ी उच्च कोटि की हो जाएगी। टिकलाने से उस प्रकार की बात नहीं होती जो हृदय के भाव के सुधार से होती है। भगवान के नाम का जप उच्च कोटि का क्या स्वरूप है कि भगवान के नाम का जो हम लोग जप करते हैं वे अहेलना पूर्वक करते हैं। नाम का जप हो रहा है, माला जपते हैं, बीच में निद्रा आ गई, माला हाथ से गिर गई, गीता जी का पाठ करते हैं और वो पुस्तक हाथ से गिर गई, निद्रा आ गई, तो ये एक प्रकार की अवहेलना है, ये कोई दामी चीज नहीं है। इसका फल आप बहुत उच्च कोटि का देखोगे तो कैसे मिलेगा, क्योंकि आप अपने साधन की तरफ देखिए कि आपका साधन किस दर्जे का है, उस दर्जे के अनुसार ही तो लाभ होगा। ये जो मशीन है इसमें जैसे शब्द बोले जाते हैं वही इसके वहां समझो कि भरे जाते हैं, वैसे इसके जिसके वहां दाखिल हो जाते हैं वैसे सब निकलते ठीक वैसे निकलते हैं कि जैसे भरे जाते हैं। इसी प्रकार से थी आपका साधन जो है जिस कोटि का होगा उसी के अनुसार तो समझो कि आपको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो नाम का जो जप है वो एक तार होना चाहिए और मन से होना चाहिए। वाणी से जो नाम का जप है उसकी अपेक्षा जो श्वासों के द्वारा नाम का जप है वो दामी है, और श्वासों के द्वारा जो नाम का जप है उससे भी बढ़कर के मानसिक जप है। किंतु मन से जब आपको ध्यान करना है तो नाम का जप आप वाणी से कर सकते हैं और श्वास के द्वारा भी कर सकते हैं। उत्तम बात यह है कि वाणी के द्वारा नहीं करके श्वास के द्वारा नाम का जप करना चाहिए और मन से उस नाम का जो अर्थ जो नामी है उसका चिंतन करना चाहिए। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है तो जपस तदर्थ भावनम, उस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना। अर्थ की भावना का मतलब है कि उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, भावना माने चिंतन, अर्थ माने उसका स्वरूप। तो नाम जप के साथ साथ के वहां भगवान के नाम का जो स्वरूप है उसका जो चिंतन है, अर्थ का जो चिंतन है वो और भी दामी चीज है। इस प्रकार से अर्थ का चिंतन करते समय में हम उसको निष्काम भाव से करें तो फिर करना ही क्या है। तो नाम का जप जो है तो निरंतर होना चाहिए और साथ साथ में उस नामी का चिंतन रहना चाहिए और वो निष्काम भाव से होना चाहिए और आदर पूर्वक होना चाहिए। आदर पूर्वक उसको कहते हैं कि सत्कार पूर्वक हम भगवान का भजन करते हैं। और अभी आपको बताया बीच में निद्रा या आलस आ गया तो वो आदरणीय अनादर है। इसी प्रकार से तीमन इधर उधर कहीं चला गया तो वो भी एक प्रकार से आदर पूर्वक नहीं है। भगवान के मां श्रद्धा होने पर, भगवान के नाम के जप के ऊपर श्रद्धा होने पर और प्रेम होने पर ये दोष नहीं आ सकता। श्रद्धा जो है, प्रेम जो वो भाव है, तो भगवान के नाम का जप श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हमको करना चाहिए। फिर ये नहीं करना होगा कि आदर और सत्कार पूर्वक करना चाहिए। जहां श्रद्धा है वहां आदर और सत्कार उसके अंतर्गत ही है। जहां प्रेम है उस जगह के बीच के मां उसकी फिर भूल नहीं हो सकती। जहां प्रेम है वहां निद्रा और आलस भी पास में नहीं आ सकते। तो जिस भगवान के भजन में यानी भजन करते समय में न निद्रा आवे न आलस आवे न कोई संसार की फुरना हो तो वो दामी है। और फिर साथ में हुए निष्काम भाव तो फिर करना क्या है। तो ऐसा जो भजन है उसका महात्म बहुत ही उच्च कोटि का है। इसी प्रकार से हम लोग जो परमात्मा का ध्यान करते हैं वो ध्यान भी हम लोगों का दामी होना चाहिए। समझो कि हम परमात्मा के साकार निराकार या सगुण या निर्गुण किसी भी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं तो सगुण साकार का जब हम ध्यान करते हैं तो उसकी जो रूप माधुरी है उसका समझो कि आस्वादन लेना चाहिए। भगवान का जो स्वरूप है, जैसे कोई कामी पुरुष कामनी का मुख देख करके के चुमन करके के उसका एक प्रकार से आस्वादन लेता है वो बहुत गंदी बात है। वो घोर उसके मन उसका पतन होता है। तो इस प्रकार से भगवान का जो स्वरूप है उस भगवान के स्वरूप को हम देख देख करके कि और एक प्रकार से आनंद का अनुभव करे, रस का अनुभव करे, उसका नाम रसास्वाद है। भगवान की जो सुंदरता है, त्रिलोकी के में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जो भगवान की जैसी सुंदरता हो। भगवान की जैसी की तो बात ही नहीं, सारी दुनिया का जो सौंदर्य है वो इकट्ठा कर लिया जावे तो भगवान की सुंदरता के मुकाबले में सब मिलकर के भी एक अंश के समान भी शायद ही हो। उसकी इतनी उच्च कोटि की सुंदरता है कि हम सात्विक कहें तो भी वो बात उचित नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं गुणातीत है। तो उसकी जो सुंदरता है उसमें इतनी आकर्षक शक्ति है कि एक बार हम देख लेते हैं तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम नेत्रों को बंद भी नहीं कर सकते, और उसके द्वारा एक रस का स्रोत इस प्रकार से लगातार आता रहता है कि उत्तरोत्तर बढ़ता चले जाता। कोई भी एक तालाब है और जल से भरा हुआ है और उसके कहीं छेद हो जाता है तो वो समय समय एक प्रकार से बढ़ता ही चला जाता है उचित। इस प्रकार से भगवान जो है तो एक प्रेम के सागर हैं, और उस प्रेम का जो स्रोत जो बहने लग जाता है तो वो बहुत जल्दी इतना घर कर लेता है कि इतना जबरदस्त घर कर लेता है कि एकदम मनुष्य उसमें मोहित हो जाता है, जादू का सा काम होता है। तो उसमें बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है, उसकी इतनी भारी सुंदरता है कि सारी दुनिया की सुंदरता एकदम फीकी पड़ जाती है। उसकी अपेक्षा है फिर संसार के किसी विषय भूमों के बीच के मां, संसार के किसी भी रस के बीच के मां हम आसक्त नहीं हो सकते, और न उस संसार के रस में हमको रस ही प्रतीत होता है। तारों की चमक है और तारों की चमक के बीच के मां जब तक की चमक प्रतीत होती है कि जब तक सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य भगवान के उदय होने की जब तैयारी हो जाती है तभी तारों के भीतर में जो चमक है वो क्षीण हो जाती है, उसमें वो चमक अब नहीं दिखती। सूर्य भगवान के उदय होने के बाद तो तारों के बीच के अपने कोई चमक दिखती ही नहीं, तारे ही नहीं दिखते। इसी प्रकार से संसार के भवों के भीतर में जो रस प्रतीत होता है वो रस एक प्रकार से प्रतीति नहीं होता। संसार के भवों के वहां कहीं रस की प्रतीति नहीं होती, और चित्त के बीच के वहां जब भगवान की तरफ प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, और संसार की तरफ के बीच में वैराग बढ़ता है, उस वैराग अवस्था के बीच के मां भी संसार के विषय भोगों के बीच के मां जो चमक है, दमक है और जो रस है वो एक प्रकार से संजो की क्षीण पड़ जाता है। जिस प्रकार वैराग जो बढ़ता जाता है तो एक प्रकार से वो रस क्षीण पड़ता चला जाता है, और वैराग के बाद में जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है तब तो फिर बात ही क्या है। वैराग का होना एक प्रकार से अरुणोदय के समान है। अरुण का उदय जो होता है माने सूर्य उदय होने के एक मुहूर्त पूर्व दो घड़ी पहले जो समय है उसको अरुणोदय कहते हैं, और अरुण उदय होने के बाद से लेकर के सूर्य उदय होने तक वो एक प्रकार से अरुण का जो उदय है वो बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार संसार में प्रकाश बढ़ता चला जाता है और तारों की जो चमक है वो क्षीण पड़ती चली जाती है। इसी प्रकार वो वैराग जिस प्रकार से बढ़ता चला जाता है, वैराग ही यहाँ अरुण उदय है। जो वैराग उदय हो गया और वो वैराग जो बढ़ता चला जाता है, जो संसार के विषय भोगों के बीच के मां जो रमणीयता प्रतीत होती है, सुख प्रतीत होता है, उसके बाद जो एक प्रकार से रस प्रतीत होता है वो सब एक प्रकार से समाप्त होता चला जाता है। सूर्य उदय होने के 5 मिनट पूर्व सब तारे छिप जाते, नहीं दिखते। बृहस्पति शुक्र ये 2 तारे दिखते हैं। तो देह के भीतर के मां जो बुद्धि तत्व है वो बृहस्पति है, और जो अहंकार तत्व है वो शुक्र है। तो कुछ अहंकार कुछ बुद्धि जो है, माने बुद्धि का कुछ अभिमान और अहंकार का कुछ अभिमान, जो अभिमान ने लेकर के संसारिक हमको सुख प्रतीत होता है, वो एक प्रकार से कुछ कुछ प्रतीत होता है। तो उसका अभिप्राय कहने का यह है कि जो एक प्रकार से मान और बड़ाई और प्रतिष्ठा की जो कुछ इच्छा है वो एक प्रकार से अहंकार को लेकर है। तो अहंकार एक प्रकार से एक थोड़ी खराब चीज है, किंतु इसकी किंचित मात्र चमक जब तक रहती है कि जब तक सूर्य उदय नहीं होता। संभव है कि सूर्य उदय होने के समय से 1-2 मिनट के पहला ही एकदम आपने खत्म हो जाता है, नहीं दिखता है आपने शुक्राचार्य भी। सूर्य उदय होने के बाद तो उसका समझो कि नाम निशान भी नहीं रहता। तो इसी प्रकार से समझो कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद तो संसार के सारे विषय भोग इस प्रकार से छिप जाते हैं जैसे तारे छिप गए। यदि तारे कहीं है तो हो, किंतु अपनी दृष्टि के बीच में तो कोई आकाश में कोई नक्षत्र या तारा या कोई एक प्रकाश है ही नहीं। तो ज्ञान होने के उत्तर काल के बीच के मां समझो कि उस ज्ञानी की दृष्टि के मां सृष्टि है ही नहीं। जैसे महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दृष्टि में बताया है कि कर्तार्थम प्रति नष्टम अप्रियानष्टम अन्य साधारण द्वार, कर्तार्थ के लिए संसार नाश हुई भी समझो कि बड़ी पड़ी है। इसके लिए तो दूसरों के लिए क्यों अन्य साधारण द्वार, अन्य माने दूसरे जो हैं उनके लिए यह है, क्योंकि साधारण होने से सब के लिए या एक प्रकार से थी संसार है, इसलिए औरों के लिए वो कायम है। उस पुरुष के लिए मैं होने पर भी दूसरों के लिए है, तो दूसरों के लिए हो जो मुक्त नहीं है उनके लिए हो। ज्ञान के सिद्धांत के बीच के मत तो ये बात नहीं। ज्ञान का सिद्धांत तो यह है कि जैसे स्वप्न की संसार सपने में एकदम प्रत्यक्ष दिख रही, और आंख खुलने के बाद वो स्वप्न की संसार नहीं है। यदि कोई कहे कि स्वप्न के बीच के मां जो संसार थी उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा, तब भी कहीं होती होगी, तो ये बात गलत है। वो कहीं न थी न है, वो तो एक अपने मन की कल्पना ही थी, किंतु स्वप्न काल के मां वो चीज एकदम प्रत्यक्ष थी। जैसे इस समय के मां जो बातें प्रत्यक्ष है, ऐसे ही सपने के मां वे बातें प्रत्यक्ष थी। भोग और आराम सब एकदम प्रत्यक्ष थे, किंतु आंख खुलने के बाद में उनका नामो निशान नहीं है और वास्तव में उसकी गंध भी नहीं है। उसको याद करने पर मुश्किल से वो याद होती है, पर वास्तु के बीच के मां एकदम ये निश्चय रहता है कि वो कोई पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। तो ज्ञान के सिद्धांत के बीच के मां, ज्ञान होने के उत्तर काल के बीच के मां, स्वप्न के संसार की माफक उसका अत्यंत अभाव हो जाता है। फिर भी स्वप्न के संसार के संस्कार तो रहते हैं, इस प्रकार का स्वप्न मुझको आया, किंतु ज्ञान के उत्तर काल के बीच के माँ जो पुरुष उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उनकी दृष्टि में तो सृष्टि रहती ही नहीं, उसका तो संसार से कोई संबंध रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता, कैसे नहीं रहता, ये बात खूब ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। स्वप्न में थे तो उस समय में मन भी था, बुद्धि भी थी और हम भी थे, और जागने के बाद में वही मन है और वही बुद्धि है और मैं भी हूं। ये तीन चीज तो ठीक एक प्रकार जो सपने में जो ये तीन पदार्थ थे वही वर्तमान में, और सपने की जो संसार इसके अलावा थी वो कोई ऐसा नहीं। देखने वाला जो दृष्टा जो आत्मा है और जिस अंतकरण के द्वारा स्वप्न देख रहा था वह अंतकरण और आत्मा दोनों मौजूद है, किंतु सपने की संसार नहीं है, दृश्य नहीं है। ज्ञान होने के उत्तर काल में जब ये जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान के सिद्धांत में वो आत्मा तो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, आत्मा तो उस परमात्मा से कोई भिन्न रूप में रहता नहीं। और ये मन और बुद्धि जो है ये इसी शरीर में रह जाते हैं, वहां जा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा तो चेतन है, गुणातीत है और ये सब जड़ है, तो उसके साथ में उनका कोई संबंध ही नहीं है, तो ये कैसे जा सकते। तो वहां जब ये मन बुद्धि नहीं जा सकते तो फिर स्वप्नवत भी ये संसार किसको प्रतीत होगा, कैसे प्रतीत हो। स्वप्न से हम जागृत अवस्था में आए और जागृत अवस्था में वे मन बुद्धि हमारे साथ में यहां नहीं आते तो यहां स्वप्न की बात कौन कहता। स्वप्न का जो दृश्य है वो स्मरण करने से भी उसकी समृद्धि नहीं होती, किंतु जो मन बुद्धि स्वप्न में थे वही मन बुद्धि जागृत अवस्था में है। किंतु ये जीव तीनों शरीरों से एकदम अलग हो जाता है, यानी तीनों शरीरों से किसी शरीर के साथ में संबंध नहीं रहता है,